डॉक्टर उवैस सिद्दीक आज प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे और दिल की तेज धड़कनें आज का मौजू है चलते हैं की खिदमत में। और डॉक्टर साहब सलाम अर्ज करती हूँ और खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में।
शुक्रिया आपका भी।
क्या हाल चाल है? ठीक ठाक
अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और डॉक्टर साहब दिल की तेज धड़कने दरअसल क्या चीज़ है बताइए हमें।
जैसे अगर हम इंग्लिश में इसको बताएंगे तो इसको पाल्पिटेशंस के नाम से जाना जाता है। और जैसे दिल की दूसरी बीमारियां है इसी तरीके से पाल्पिटेशंस या दिल की तेज़ धड़कने इसका दूसरा नाम तपिश कल्ब जिसको हम बोलते हैं, मतलब दिल का तेज़ तेज़ धड़कना फिर उसको तपिश में तब्दील हो जाना तो उसको पाल्पिटेशंस बोलते हैं। तो इसी को दिल की तेज़ धड़कने बोलते हैं। जैसे दिल की दूसरी बीमारियां होती है किसी दूसरे वजूहात की वजह से, किसी कोई अवामिल उनमें शामिल हो, इसी तरीके से पाल्पिटेशंस में भी कुछ वजूहात शामिल है, कुछ अवामिल शामिल है जिसकी वजह से ये इत्तिफाक मतलब असरअंदाज होता है।
सही।
लेकिन ज़्यादातर हाँ तो ज़्यादातर पहले इससे पहले कि मैं बात कर रहा हूँ वजूहात पर, थोड़ी एक और जुमला आपको बता दूँ। जो पाल्पिटेशंस जिसको हम क्या कहते हैं दिल की तेज़ धड़कने बोलते हैं, इसमें यह होता है कि ये ज़्यादातर नुकसानदेह नहीं होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि ये खुद ही एक इनका एक अपना टाइम होता है जिस टाइम तक ये दिल की तेज़ धड़कने हो मतलब दिल तेज़ धड़कने इख्तियार कर लेता है तो उसके बाद कुछ ही टाइम में वो खुद ब खुद अपने नॉर्मल या जो तबीई जो धड़कने होती है हाँ दिल की धड़कने होती हैं वो वहाँ तक पहुँच जाती है। लेकिन अगर कुछ दूसरे वजूहात इसमें शामिल हो जाए जो इसको हम सेकेंडरी काजेज बोलते हैं, मतलब कोई दूसरे सानवी जो इसमें वजूहात शामिल हो जाएं तो फिर ये बहुत ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकते हैं। तो आप जैसे आपने कहा कि वजूहात पे बात करेंगे, इसके बहुत सारे वजूहात हैं। जैसे मैंने कहा कि एक वजूहात ये कि खुद इसमें दिल शामिल हो उन वजूहात पे, और दूसरे वजूहात ये कि जिसमें दिल शामिल ना हो। पहले मैं उन वजूहात पे बात करूँगा जिनमें दिल शामिल ना हो। तो ऐसी कुछ वजूहात हैं, कुछ मैं पॉइंट पॉइंट बात करूँगा उन पर। तो कुछ हार्मोनल चेंजेस होती है, जैसे हम बात करेंगे औरतों में जो प्रेगनेंसी के दौरान या उनका जो एक खास टाइम होता है मेंस्ट्रुएशन, तो उनके दौरान जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उनमें कुछ हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं जिनकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, तो वो एक वजूहत बन सकती है। और इस पाल्पिटेशंस को क्या है कि एक इंसान जो है जब उसके दिल की धड़कन तेज़ होती है तो उसको एहसास होता है।
अच्छा।
वो उसको फील करता है कि मुझ में मतलब मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, या ऐसा भी होता है कि जैसे उसको लगता है कि जैसे मेरा दिल का धड़कना अभी बंद हो जाएगा तो उसमें ऐसा भी जैसे मिस कर रही है कोई बीटिंग हार्ट की, तो उसको ऐसे फील होता है पाल्पिटेशंस में। तो ऐसे हार्मोनल काजेज जैसे हमने बताया, और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी इसमें साइकोलॉजिकल काजेज होती है। सबसे बड़ा जो जो दिल के मतलब दिल के साथ ताल्लुक नहीं रखता है ऐसी मतलब वजूहात में से है एंग्जाइटी जिसको हम बोलते हैं, इज़्तिराब, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये बहुत सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है क्लिनिकल में। जब भी कोई पेशेंट जो आता है, जब क्योंकि बहुत सारे ईरान में भी यहाँ पे भी बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने देखा है जो हर वक्त जो कार्डियो मतलब दिल की बीमारियों के साथ आते हैं, वो बोलते हैं मतलब तपिश कल्ब का शिकार हुए हैं हम, तो अक्सर उनको फिर साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है। तो ज़्यादातर इसके यही इज़्तिराब के शिकार होते हैं, स्ट्रेस के शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो मेटाबॉलिक जो वो सब कुछ और दिमाग का जो वो निज़ाम होता है, बिल्कुल जो नफसियाती निज़ाम होता है और वो न्यूरोनल कोऑर्डिनेशन जो होती है, तो उनकी वजह से जो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स और दूसरे फिर उसका असर मतलब हमारी रगों के ऊपर, हमारी नसों के ऊपर उसका असर, तो फिर उसकी वजह से भी पाल्पिटेशंस आ सकती है।
मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है अपने बॉस के सामने जाना चाहता है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, या आपने कहीं कोई तकरीर करनी है लोगों के सामने, तब ये हालत हम पड़तारी होती है।
जी बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने कहा कि ऐसी मिसालें की ये एक तबीयी होती है, जो लेकिन पाल्पिटेशंस का जो जिक्र हो रहा है यहाँ पे वो क्लिनिकली रिलेटेड हम कर रहे हैं। तो इनकी कुछ वजूहत ऐसे भी है जैसे हमने कहा, जैसे मैंने कहा दो वजूहत पर हमने बात की, इसके अलावा थायराइड ग्लैंड भी आ सकता है इसमें। अगर थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले के आसपास ही होता है, बिल्कुल यहाँ पे मैं जैसे निशान दे रहा हूँ यहाँ पे थायराइड ग्लैंड वाका होता है, तो अगर उसमें कुछ इख्तलाल पैदा हो जाए, अगर उसमें कुछ मतलब जैसे वो हमारी वो भी बहुत सारे हार्मोन्स मतलब सिक्रेट करता है, तो इसी की वजह से अगर उसमें कोई इख्तलाल पैदा हो जाए, अगर उसमें कोई
प्रॉब्लम आ जाए,
उसके निज़ाम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसकी वजह से भी पाल्पिटेशंस का शिकार हो सकता है इंसान। और ड्रग्स के इस्तेमाल करने से, जैसे एक आदमी मतलब खांसी के लिए जो अक्सर आते हैं, डिकॉन्जेस्टेंट्स हम बोलते हैं उसको या एक्सपेक्टोरेंट्स बोलते हैं, तो उनके इस्तेमाल करने से भी कभी कभार अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और अपने वक्त के मुताबिक इस्तेमाल ना किया जाए, और वो डी एक्सपेक्टोरेंट्स का दूसरा भी कुछ मतलब साइड इफेक्ट्स ऐसा भी होता है कि वो पालपिटेशंस मतलब फील होते हैं इंसान को, एक इंसान अपनी दिल की तेज़ धड़कने फील कर सकता है। तो ये कुछ इसके वजूहत थे जो हार्ट के
वजूहत थी जिसमें हार्ट नहीं है, आपका दिल मौजूद नहीं है। अब चलते हैं दिल वाली वजूहत की तरफ।
तो दिल वाली वजूहत में यही पाई जाती है जिसमें खुद बनस्बत उसके जो सेकेंडरी काजेज है, तो बनस्बत उसके कि पालपिटेशंस अगर उसमें जैसे हमने कहा कि वो ज़्यादातर जो सेकेंड जैसे हमने पहले बात की कि उसमें मतलब दिल इन्वॉल्व नहीं होता है, कि उसमें हार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, वो ज़्यादातर काजेज फिर आपस में ही चली जाती हैं, वो कुछ देर तक रहती है और फिर वो चली जाती हैं। तो लेकिन जो दिल का मसला है और अगर इसमें खुद दिल मतलब इन्वॉल्व हुआ हो तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे हम बात करेंगे कि हार्ट फेलियर हो सकता है।
हार्ट फेलियर की तरफ हम आए और जहां पर अब दिल खुद इन्वॉल्व है इस मसले में।
तो हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जैसे मैं एक मिसाल की तरह बता दूँ, क्योंकि हमारे दिल के जो है उसके चार मतलब हिस्से हैं, तो चार हिस्सों में क्या होता है कि ब्लड जाता रहता है और फिर ब्लड वहाँ से जाके फिर हमारी बॉडी की दूसरे पार्ट्स तक पहुँच जाता है। तो कभी कभार ये होता है कि जो ब्लड जम जाता है किसी एक मतलब जिसमें किसी एक चार हिस्सों में से किसी एक हिस्से में खून जम जाता है, वो निकलता नहीं है वहाँ से, तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर का शिकार हो जाते हैं। तो उसकी वजह से पालपिटेशंस आ सकती हैं, उसकी वजह से भी दिल तेज़ धड़कता है। और दूसरा इसका ये है कि हमारे दिल के अंदर दरीचे होते हैं, तो जिनको हम वाल्व्स बोलते हैं, हार्ट वाल्व्स, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, कभी कभार ये होता है कि क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है अगर मैं थोड़ा बहुत क्योंकि हमारे जो दिल के जो दरीचे हैं ये अक्सर मतलब ये तीन मतलब डिविजन्स तीन वर्ग की तरह होता है, तीन लीव्स जैसे हम बोलते हैं इनको, तो तीन पत्तों की तरह ये होते हैं। तो अक्सर ये होता है कभी कभार ये होता है कि तीन के बदले दो ही आ जाते हैं, वो मतलब कॉन्जेनिटल और क्या कहते हैं उसको, वो मादरजादी होते हैं, तो जेनेटिक मसले होते हैं। जी बिल्कुल, तो उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसके वजह से भी पालपिटेशंस का शिकार हो सकते हैं। और इसके बरक्स हार्ट की कंडक्शन वेलोसिटी, हार्ट रेट में प्रॉब्लम हो सकती है। जो मैं एक बात कहूँगा आपसे यहाँ पे, जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो 60 से लेके 100 हार्ट बीट तक नॉर्मली एक इंसान एक मिनट में हार्ट बीट होती है,
60 से 100
तक। तो अगर 60 से कम हो सकती हैं तो वो भी इस पालपिटेशन का शिकार बन सकता है, और अगर 100 से ज़्यादा होगी तो जिसको हम बोलते हैं उसको हम टेकिकार्डिया अपने मतलब एक जो मतलब प्रोफेशनल लैंग्वेज है, तो उसका शिकार हो सकता है, तो उसमें भी पालपिटेशंस हो सकते हैं। तो दोनों इन दो तीन मतलब ये बहुत बड़े काजेज है जिसमें हार्ट खुद इन्वॉल्व होता है। और कंडक्शन वेलोसिटी एक और मैं बताऊँ, जब हमारी जैसे हमारे जो ये निज़ाम असाब है हमारा, तो वहाँ पे जैसे एक कुछ देखने को मिला है कि कुछ इलेक्ट्रिक करंट्स की तरह वहाँ से इम्पल्सिस पास होती हैं एक मतलब न्यूरॉन से लेकर दूसरे न्यूरॉन तक, इसी तरीके से हार्ट में भी बिल्कुल वैसे ही हार्ट में भी एक करंट्स पास होते हैं। तो अगर क्योंकि हमारी जो हार्ट की मसल्स है उनमें सबसे पहले सोडियम और पोटाशियम होता है, तो सोडियम और पोटाशियम के अगर अगर उनमें इक्विलिब्रियम पैदा ना हो और उनमें अगर इक्विलिटी पैदा ना हो और कुछ इख्तलाल पैदा हो जाए, या सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए या पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से हार्ट में कंडक्शन की जो है उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो हार्ट अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाता है उन इम्पल्सिस को, और किसी न किसी जगह हार्ट रुक जाता है वो आगे इम्पल्सिस आगे ले जाने तक, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड अच्छी तरीके से हमारे दूसरे बदन के अज़ा तक नहीं पहुंच पाता है।
नहीं होता
जी बिल्कुल, तो उसकी वजह से भी पालपिटेशंस एक इंसान हिस कर सकता है अपने बदन के अंदर। जी बिल्कुल।
अच्छा, तो डॉक्टर साहब चलते हैं इस तरफ कि कोई खास अलाइम है इसकी। मिसाल के तौर पर आपने कहा दो वजूहत हैं जिसमें एक दिल जो है वो खुद ज़ाती तौर पर जो है इसमें किरदार निभाता है, और एक जो है दूसरी बीमारियाँ मसाइल हो सकते हैं। क्या इनकी अलाइम में कोई फ़र्क है आपस में?
असल में ये खुद एक पालपिटेशन जो है ये एक अलामत है तो किसी चीज़ का। और इसके साथ साथ तो कुछ चार चीज़ें हैं जो बहुत ख्याल रखने चाहिए इन चीज़ों का। अगर वो साथ आपकी दिल की तेज़ धड़कन के साथ अगर जिन चार चीज़ों का मैं जिक्र करूँगा अभी, तो अगर वो चार चीज़ें आपके दिल की तेज़ धड़कन के साथ आ जाएँ और आपको हिस करने लगे तो वो एक अलाइम की सूरत इख्तियार करें, तो जल्द से जल्द डॉक्टर को रुजू करना पड़ेगा।
सही।
पहली अलाम इसकी ये है कि सर का वो चक्कर आना, और जैसे हम अक्सर कहते हैं कि मेरा सर घूम रहा है, तो उसको लगता है कि मैं सर के इर्द गिर्द जो मेरा कमरा है वो भी घूम रहा है। तो अगर उसके साथ साथ अपने उसने दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही है तो ये भी इसकी एक अलामत है, शायद वो उसका मतलब वो जो है अनकॉन्शियसनेस तक ले जाए, या उसका जो ये कहीं दूसरे कॉजेज भी हो सकते हैं जिस इस सर चकराने की वजह से। और इसके साथ साथ है गश करना, अगर हार्ट की जो दिल की धड़कने इसने हिस की और इसके साथ साथ गशी तारी हो रही है इस पर, तो ये इसकी एक दूसरी अलामत है। जी बिल्कुल, ये भी खतरे की घंटी हो सकती है। और इसके साथ साथ दूसरी ये कि जैसे हमने कहा, एक तो हुआ ये,
हमने यहाँ पर दो जो है उनको बिल्कुल गुफ्तगू की है, बिल्कुल
दो, और एक है इसमें क्या कहते हैं इसको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको हम बोलते हैं, सांस का फूल जाना। जी बिल्कुल, अगर उसको सांस लेने में मुश्किल पैदा हो रही है उसकी धड़कन के साथ साथ, तो उसमें भी मतलब वो डॉक्टर को रुजू करे, और उसकी बहुत बड़ी अलामत ये भी हो सकती है।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ अक्सर मैंने देखा है, जब दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं तो साथ साथ ठंडे पसीने भी मैंने देखा है बहुत से लोगों को आते हैं, तो ये क्या कोई अलामत हो सकती है?
जी बिल्कुल, अक्सर इसके साथ साथ मैं एक जुमला ये भी जोड़ दूँ कि अक्सर कुछ लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं बहुत, जिसको हम बोलते हैं विगरस एक्सरसाइज, बड़ी एक तो होती है नॉर्मल एक्सरसाइज और होती है बड़ी मेहनत वाली एक्सरसाइज,
जान लगाकर एक्सरसाइज, बिल्कुल
जी जान लगाकर एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें भी हार्ट रेट क्या है बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से खुद भी उसको लगता है कि मेरा दिल बाहर आने वाला है। तो ऐसे ही कुछ आपने बोला कि पसीना भी आ रहा है, जब हार्ट रेट बढ़ जाती है तो पसीना भी साथ आ रहा है, तो जैसे ये भी एक उसकी अलामत हो सकती है। जी बिल्कुल।
अच्छा चलते हैं सिर्फ कि कौन सा ग्रुप जो है वो ज़्यादातर इसमें मुब्तला रहता है, या कोई ख़ास एज है ख़वातीन या मर्द, या कोई ख़ास उम्र के अफराद इस ग्रुप इस मसाइल में जो है मुब्तला रहते हैं?
जी बिल्कुल, अक्सर देखने को मिला है कि इसमें एक और जुमला मैं ऐड करूँ जो मैं पहले भूल गया था, तो अभी मुझे याद आ रहा है। तो कुछ मरीज़ होते हैं जो एनीमिया का शिकार होते हैं, क्योंकि एनीमिया में क्या होता है, उसमें भी कुछ ब्लड के साथ कुछ मसला होता है, क्योंकि आयरन के साथ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से अच्छे तरीके से ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो पा रहा है टिश्यूज़ को, तो उसकी वजह से भी पाल्पिटेशंस आ सकती है। और इसके साथ साथ प्रेगनेंट वुमेंस जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंट वुमेन में क्या होता है कि ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन का शिकार भी हो सकते हैं, तो हाइपरटेंशन के शिकार होने की वजह से दिल की धड़कनें भी तेज़ हो सकती हैं, तो उसकी वजह से भी पाल्पिटेशंस का शिकार हो सकते हैं। तो ज्यादातर इसमें जैसे आपने कहा कि कोई खास ग्रुप मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे हमने कहा कि अगर वो जेनेटिक कॉजेज इसमें शामिल हो जाए तो बच्चों में भी पाया जा सकता है।
अच्छा।
और जो ऐसे जवान जो एक्सरसाइज करते रहते हैं उनमें भी पाया जा सकता है। और जैसे हमने कहा कि ख्वातीन में प्रेग्नेंट वुमेन्स इसको ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स, ख्वातीन में से प्रेग्नेंट वुमेन्स में से इसको ज़्यादा शिकार हो सकते हैं।
सही। अच्छा चलते हैं सिर्फ डॉक्टर साहब की क्या कोई प्रिकॉशन आप बताएंगे, या कोई ऐसा रास्ता खास तौर पे वो अफराद जो नफसियाती वजह से इस मसले में मुब्तला रहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए?
जैसे मैंने पहले ही इसी बात से शुरू किया था, सबसे बड़ा इसका एक वजूहत है मतलब वही साइकोलॉजिकल खासे जो है जो नफसियाती मसाइल होते हैं, तो सबसे पहले उसको ये करना चाहिए, अगर एक इंसान को लगता है कि उसको एक नोट लेना चाहिए, जब मैं ये काम कर रहा हूँ मेरे क्या काम करने से मुझे ये दिल की जो धड़कनें हैं ये तो तेज़ हो जाती हैं, मैं मतलब क्या काम करता हूँ जिसकी वजह से ये शुरू हो जाते हैं,
क्या मैं सोचता हूँ?
जी बिल्कुल, क्या मैं सोचता हूँ, क्या मैं करता हूँ, या किस क्या वजह बन रही है जिससे मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं और मैं उनको हिस कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा इसमें ये जो प्रिकॉशंस जो आपने बताई, तो इसमें एक रिलैक्सेशन थेरेपी आती है, जो जो इंसान इज़्तिराब स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हुआ हो तो उसके लिए रिलैक्सेशन थेरेपी बहुत ही अच्छी है, तो वो रिलैक्सेशन थेरेपी कर सकता है और अपने आप को थोड़ा बहुत वो कंफर्टेबल फील दिला सकता है।
नरगिस अख्तर साहिबा पूछती हैं, कहती हैं कि उनकी वालदा को अक्सर हार्ट बीट उनका तेज़ रहता है और फिर उनको रात को नींद भी नहीं आती है और रात भर जागती रहती हैं।
सबसे पहले जो तीसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ आ जाएंगे, तो जैसे उन्होंने कहा कि हमारे उनकी वालिदा है शायद मेरे ख्याल से, तो उनको रात को ये मसला पेश आता है, तो अक्सर देखने को मिला है कि जो रात को ज़्यादातर जो कार्डियोवास्कुलर बीमारियों का मरीज़ जो शिकार होते हैं तो उनके साथ ये मसला पेश आता है। इनके साथ साथ इसको मेरे ख्याल से वो जो जैसे हमने कहा कि सांस लेने में जो दिक्कत होती है तो वो भी होती है, अक्सर देखने को मिला है ऐसे पेशेंट्स जो रात को जिनके साथ ऐसा मसला आता है कि वो हार्ट बीट्स तेज़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो खिड़की की तरफ जाते हैं, खिड़की ऑन करते हैं, वहाँ से थोड़ा हवा आता है तो इनको थोड़ा आराम मिलता है, तो फिर से सो जाते हैं।
अच्छा।
تو سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ اس کو اپنے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. ڈیفینیٹلی سب سے پہلے جو رسک فیکٹر ہے اس کا وہ تو کارڈیو واسکولر ہی ہوگا, کیونکہ اکثر دیکھنے کو ملا ہے جو ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی ہارٹ بیٹ زیادہ ہوتی ہے اور جن کو پھر وہ مطلب حس ہوتا ہے کہ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کچھ علائم ظاہر ہو رہے ہیں,
اور رات کو نیند بھی نہیں آتی.
جی بالکل, اور رات کو پھر نیند سے دوبارہ جاگ, چاہے نیند بھی آئے ہو اور نیند کے بیچ میں سے اٹھ جانا پڑتا ہے, تو اس کو اپنے جو اس کو زیادہ تر کارڈیو واسکولر جو ان کے پاس میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر جو ہوگا اس کے ساتھ رجوع کریں اور ڈیفینیٹلی اس کو ایک طریقے کی سکریننگ کروائیں کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کی,
تو خدا نہ خاصا کوئی اور مسئلہ پیش نہ آ جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور امید کرتی ہوں کہ نرگس اختر کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب, چلتے ہیں اس طرف کہ دل کی تیز دھڑکنیں, اس کا دورانیہ کتنا رہتا ہے؟ 2 منٹ, 5 منٹ, نہیں اس سے زیادہ؟ اور پھر مہینے میں یا ہفتے میں کتنی بار ریپیٹ ہوتا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہاں بھائی ابھی یہ جو دل کی تیز دھڑکن ہے یہی مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے؟
یوزولی آپ کے کوشچن کا جواب یوں ہوگا کہ جو اگر ہمارے جو جیسے ہم نے وجوہات بیان کیے تھے, دو وجوہات ہیں, ایک تو جس میں دل خود مبتلا ہوتا ہے اور پیجز دل کے جو دوسری چیزیں دوسرے وجوہات ہم نے بیان کیے, تو اگر اس میں بجز دل کے دوسرے علائم مبتلا ہو, دوسرے وجوہات مبتلا ہو, تو وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتی ہے. یوزولی دیکھنے کو ملا ہے کہ جو اینگزائٹی اور ڈپریشن سے جو پالپٹیشنز جو ایک بندہ حس کرتا ہے, تو وہ یوزولی 5-6 منٹس تک رہتی ہیں, تو اس کے بعد وہ خود بخود اپنی نارمل روٹین کی طرف آ جاتے ہیں. تو لیکن اگر اس میں دل مبتلا ہو تو خدا نخواستہ یہ دوسری چیزیں مطلب اختیار کر سکتے ہیں اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ زیادہ دیر تک رہ سکتی ہیں, کیونکہ اس میں سیکنڈری کازز اور جو انڈر لائن کازز جو ہے وہ کچھ اور ہے. جب تک اس کی ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو تب تک پالپٹیشنز ہوتی رہے,
یہ علائم کے طور پر سامنے آتی رہیں گی, اور ہو سکتا ہے کہ شاید ہفتے میں 2 بار یا 1 بار یہ بار بار ریپیٹ بھی ہوں. صحیح, تو چلتے ہیں اس طرف. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے. اب حاملہ خواتین تو دوائیاں بھی نہیں لے سکتی, اور بار بار یہ مسئلہ پیش آنا, کیا کیا جائے ان کے لیے؟
اصل میں جو ایک ان کا ایک کیونکہ جو پریگنینسی ہے اس کو کچھ ٹرائمسٹرس میں ہم بولتے ہیں ڈیوائڈ کیا ہے, ایک 3 ٹرائمسٹرس
میں. جی بالکل, جی بالکل.
تو اکثر دیکھتے ہیں کہ لاسٹ کے جو 3 مہینے ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر کمپلیکیشنز آتی ہیں, کیونکہ زیادہ تر ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے اور اپنی اپنی جو کہتے ہیں کہ اپنی وہ ڈیلیوری کی طرف
نزدیک
ہوتی ہیں, تو اس میں زیادہ تر کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں. جس میں اکثر دیکھنے کو ملا ہے پریگنینسی میں کیا ہوتے ہیں, ہارٹ ریٹ آلریڈی نارملی وہ انکریز ہو جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مطلب بلڈ پریشر ہے وہ بھی انکریز ہو جاتا ہے. ہارٹ ریٹ, بلڈ پریشر انکریز ہو جانا, اور اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جو پالپٹیشنز کی جو فیلنگ ہوگی, جو دل کے دھڑکنے کی فیلنگ ہوگی, تو اسی کی وجہ, کیونکہ ہارٹ ریٹ جب تیز ہوتی ہے تو مطلب یہ دل تیزی سے دھڑک رہا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے اور بلڈ پریشر بھی بڑھ رہا ہے آپ کے پیریفریز میں, جو جتنے بھی نسیں ہیں اور جتنے بھی رگیں ہیں تو ان میں, تو جو اپنے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ ان چیزوں کا خیال پہلے رکھتے ہیں. وہ ہماری مطلب جو ایک عورت ہے تو وہ اس میں مطلب مبتلا ہے, تو اس کو ان چیزوں کا خیال آلریڈی رکھتے ہیں, تو اس کو اچھے اچھے طریقوں کی طرف لے جاتے ہیں, تاکہ یہ کسی زیادہ تر ہمارے نہ بچے کے لیے کوئی کمپلیکیشن بن جائے نہ ماں کے لیے کوئی کمپلیکیشن.
بالکل ایسا ہی, اور جو گائناکولوجسٹ ہوتی ہیں وہ اکثر آخری جو ٹرائمسٹر رہتا ہے اس میں ورزش کی جو ہے تجویز دیتی ہیں کہ ورزش ضرور کیجیے تاکہ یہ مسائل آپ کو پیش نہ آئے. چلتے ہیں حسن بھائی کی طرف, گفتگو کو اس کے بعد آگے بڑھائیں گے. جی
بہت بہت شکریہ, اور آپ لوگوں کے پیغامات کا بھی شکریہ, پروگرام دیکھ رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں, اور ان شاء اللہ مفید بھی ثابت ہو رہا ہو. اور موضوعات ہم لوگوں کے مختلف رہتے ہیں, میڈیکل مسائل جو ہم لوگوں کو ہوتے ہیں جسم کو, تو ہفتے بھر اگر دیکھتے رہیں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کا سوال کے آپ کے سوال کا جواب ضرور دے گا. چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب.
Oh, my God.
جی ناظرین، اس طرح سے انشاءاللہ کہ ہم لوگ سب ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے ہیں. ایمبولینس پہ چڑھنا بھی ویسے ابھی تک ہمیں یاد ہے وہ والا مسئلہ، تو چڑھا نہیں جاتا ایمبولینس کے اوپر بلکہ مدد کی جاتی ہے، راستہ کھولا جاتا ہے اور ٹریفک میں بھی نہیں پھنسایا جاتا ہے ایمبولینس کو. چلتے ہیں رباب منصوری
اور مریض کو لٹایا جاتا ہے بجائے اس کے اوپر اچھلنے کے. جی چلتے ہیں اپنے معزز مہمان کی طرف، ڈاکٹر اویس صدیق صاحب. ڈاکٹر صاحب، آخری حصہ ہے، 3 منٹ کا وقت ہے، تو میں چاہوں گی کہ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے تو وہ خود پہلے کیا کرے اور پھر ڈاکٹر حضرات کیا کرتے ہیں.
جی بالکل، اگر وہ اسموکنگ کر رہا ہے تو بالکل اس کو آل ٹوگیدر وہیں پہ روکیں، اور کیونکہ نکوٹین جو ہے وہ ہمارے سمپتھیٹک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہارٹ ریٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے الکحل اگر یوز کر رہا ہو بالکل اس کو بند کرے الکحل کو. ایسی طریقے ایسے ہی مطلب اگر وہ کف سرپس لے رہا ہے ان کو بھی بند کریں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے اس کو لگ رہا ہے کہ مطلب میری دل کی دھڑکنیں کو مطلب اپنی تیزی سے حس کر رہا ہوں، تو جن چیزوں کے بنا پہ وہ ہو رہی ہے ان کا خیال رکھیں تاکہ کوئی دوسری کمپلیکیشنز کی طرف نہ چلا جائیں. تو یہ کچھ مطلب کچھ پریکاشنری میجرز جس کو ہم بولتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے.
صحیح. اور ڈاکٹر حضرات آپ کیا کریں گے اگر مثال مسئلہ تھوڑا بگڑ جائے تو؟
جی بالکل، تو وہ آپ کی بالکل ایکس رے لیں گے، آپ سے بلڈ ٹیسٹس بھی لیں گے تاکہ آپ ان میں جتنے بھی میٹابولائٹس سے ان کا مطلب معائنہ کریں، دیکھیں کتنی مطلب کون سا زیادہ ہے کون سا کم ہے کس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور آپ سے یورین انالیسس بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ہائپر ٹینشن میں جو ہے کڈنی کا بہت بڑا رول ہے، تو اس کا بھی یورین انالیسس بھی کر سکتے ہیں وہ. تو یہ چند چیزیں ہیں جو ڈاکٹر حضرات مطلب
اسے مد نظر رکھتے ہوئے
بالکل
علاج سے
ہاں لے سکتے ہیں.
بالکل.